देखो वो क्या कहते हैं कि मृत्यु से दुख से मुझे मुक्त कर देना, लेकिन अपने अमृत से नहीं, अपने पीछे को रुकना पुराने और पीछे को अमृत से नहीं, अपने अमृत धाम से भगवान मुझे दूर नहीं करना। अमृत धाम यानी जहां आप रहते हो और आप भी अमर हो और हम भी अमर हैं। अजर्मा अमर सर्वेश्वर रूप पहले आपने सुनी लिया। सारे वेद को शिव जी के ऊपर छोड़ दिया लाके महापुरुष ने। ये कौन सा पृष्ठ है? 185 पृष्ठ देखो इसी वेद सरिता का। अब 190 पाइए, ये नीचे है शिव ही मृत्युंजय है। शिव ही मृत्युंजय इसका चैप्टर वेद सरिता। अब देखो यहाँ पर ये 190 पृष्ठ पे, ये 190 पृष्ठ देखो और यहाँ भगवान शिव के स्वरूप को याद कीजिए। संकेत देते हैं भगवान शंकर का भजन किया करो। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा का अर्थ है शांति शीतलता और संतुलन। इसे प्रकट होता है भगवान की आराधना करने से, उसकी शरण पाने से मनुष्य के तीन कर्तव्य ऐसे करने चाहिए कि उसके मस्तिष्क में शांति रहे, शीतलता रहे, संतुलन रहे। अब देखो भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा धारण किए बैठे हैं, मस्तिष्क पर गंगा, और गंगा है तो ज्ञान, गंगा का प्रवाह होता रहे और शांति शीतलता निरंतर बनाए रखे और संतुलन छोड़िए नहीं। भगवान शिव ने अपने गले में सर्प डाला हुआ है, मतलब हुआ कि दुष्ट लोगों से भी, कभी बुरे लोगों के जिनके काम की जहर, काम ही जहर उगलने का, उनको भी थोड़ा सा दबने पर भी एक डंग लगा देते हैं। अब कहने का भाव ये है कि ये महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, इसका शास्त्र तात्पर्य ये आ गया। अब देखिएगा गीता, एक गीता जी जो है ये हमारा पवित्र शास्त्र चारों वेदों का सार है, और गीता जी में इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना किया और स्वयं शिव जी कहते हैं उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मेरी नहीं। आप योग वशिष्ठ देखिए पहले और फिर आपको ये पवित्र शास्त्र गीता जी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण देगा। सचित्र योग विशिष्ट महारामायण द्वितीय खंड, और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखिएगा। ये ऊपर देखिए महर्षि वाल्मीकि रचित संपूर्ण योग विशिष्ट महारामायण द्वितीय खंड। संपादक हैं अनेक धार्मिक ग्रंथों के रचयिता श्री गिरधर जी। काशी प्रकाशक है काशी पुस्तकालय C14 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा, यहाँ से प्रकाशित है। अब देखो इसमें क्या कहा है, ये प्रश्न नंबर 592। श्री महादेव जी ने कहा मेरे से उस समत समस्त जगत स्वरूप मणि को पटरी में परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा में उनकी शक्तियां प्रत्यक्ष आविर्भूत होती है। अब यहां देखो महादेव जी कहते हैं मैर से उस परमात्म देव के पूजन के जितने भी कर्म हैं उन सब में पहले देह अभिमान और प्रयत्न छोड़ देना चाहिए, अपनी पूजा नहीं बताता उस परमात्मा के भगजन का। शिव जी खुद किसी और परमात्मा की तरह संकेत कर रहे हैं कि उस परमात्मा के पूजन के लिए, वह चेतन परमात्मा ज्ञान स्वरूप आदि आदि इतना बड़ा स्वरूप है ये इस प्रकार। तो ये कहने का भाव ये है कि ये महापुरुष, यहां देखो मैं वही कहते आ रहे हैं प्रश्न नंबर ये 594 आपके ऊपर देखिए। उसके हृदय कोष माने एक उनके ब्रह्मांड समूह छिपे हुए हैं, वह प्रकाश रूप तमस से परे वह परमात्म देव परम देव है। यहाँ देखो नीचे और क्या बताते हैं कि यही परमात्म शिव हर हरि ब्रह्मा इंद्र कुबेर और यम रूप स्वरूप है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की तरफ संकेत है कि वो सब की शक्ति उसी में है। यहाँ देखो उस सत्ता के होने वाली सत्ता रूप उस जग जाल का उत्पादक सेंस ये महाकाल इस परमात्म देव का द्वारपाल है। ये महाकाल कौन है? सदाशिव। ये काल भी कहते हैं उस परम पिता के सामने नौकर है उस परमेश्वर का, उसका द्वारपाल है। अब बताओ अब ये क्या कहते हैं उस परमात्म देव का? ये शिव जी कह रहे हैं उस परमात्म देव का चिंतन करना चाहिए, केवल उस परमेश्वर का, अपना नहीं बता रहे ये। अब यहां देखिएगा अब पांचवें अध्याय का 32वां श्लोक क्षमा करना सातवें अध्याय का 12 से लेकर 15वां श्लोक आपको दिखाते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये पवित्र गीता, ये पवित्र शास्त्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। ये काल ये सदाशिव ज्योत निरंजन कह रहा है ब्रह्म, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजगुण से और तमगुण से, यानी सतगुण से रजगुण से, सतगुण से तो जीवों की सती थी विष्णु का गुण है विष्णु जी के द्वारा, और रजगुण ये ब्रह्मा और तमगुण शिव जी, इन तीनों से जो भी होता है यानी जीवों की उत्पत्ति सती थी और संहार, उन सबको मुझसे ही होने वाला जान, क्योंकि इस ब्रह्म ज्योत निरंजन सदाशिव महाकाल को श्राप लगा हुआ है। ऐसा जानकर परंतु मैं उनमें नहीं और वे मुझ में नहीं, क्योंकि ये काल इनसे बाहर रहता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुण है, क्योंकि ये सांकेतिक शास्त्र है, चारों वेदों का एक सार समझो तो इसमें सांकेतिक शब्द ज्यादा है। यहाँ देखिए 13 में गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन गुणों से तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो अब 14वां क्या बताता है, 14 और 15 में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण भी मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैला गया ये जाल सती थी संहार और मृत्यु इसका उत्पत्ति का, और इन्हीं से मिलने वाली अक्षीणिक राहत सांसारिक सुख और फिर थोड़ी सी देर स्वर्ग और फिर 84 लाख योनियों में प्रताड़ना, ये त्रिगुणमयी मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा मिलने वाली राहत और इन्हीं पर आश्रित पूजा करते हैं जो लोग, ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष जो व्यक्ति मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात जो मेरी पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा राहत पाते हैं। आगे देखो 15वें में लिखा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ओए होए होए वे राक्षस स्वभाव को धारण किए, यानी माया माने तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में जो सीमित है, इन्हीं से मिलने वाली अक्षीणिक राहत में जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे ओए होए। आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए और कति निकम्मी आत्मा और बुरे कर्म भक्ति के दुष्कृत्य दूषित कर्म करने वाले मूढ़ा मूर्ख लोग, ये ब्रह्म बोलता है कि मुझे भी नहीं बचते। आप देखिएगा इधर तो आदरणीय सुधांशु जी भगवान शिव की पूजा के लिए भगत समाज को आरूढ़ कर रहे हैं और स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि मेरी पूजा ठीक नहीं भाई, और गीता जी में परमात्मा कह रहा है कि वो तो नीच आत्मा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा पर आश्रित बैठे, वो राक्षस बताए। जैसे रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी ऐसे ही, जैसे इन्होंने अपना वेदों को जैसा इनकी समझ में वेद 7 जन्म नहीं आ सकते, और इनके काम के किसी महापुरुष विद्वान पुरुष से ले गए तो कबीर परमात्मा की रजा से भगवान की इस दास पर हुई तो ये समाज ये सारे शास्त्र आपके सामने स्पष्ट हो रहे हैं। रावण ने भी ऐसे, उसके गुरुदेव ने ऐसे तुक्का लगा के, ओए होए, उस प्यारी आत्मा रावण को ये निष्कर्ष निकाल के दे दिया कि बेटा रावण, वेद में लिखा कि भगवान शिव ही सब सर्वशक्तिमान, अजन्मा अजन, सबका रचनेहारा, सब सुख देने वाला, इसी की पूजा करनी चाहिए। और यही है जिसने सागर मंथन में ये कर दिया था, वो कर दिया था, फिर जहर पिया था। अब रावण का दोष कति नहीं, दोष उस दुष्ट आत्मा उनके गुरु का है जिन्होंने शास्त्रों के विरुद्ध साधना, अपना कंक्लूजन निकाल कर अपने हिसाब से कुछ बुद्धि का प्रमाण देकर उस प्यारी आत्मा को शिव की पूजा करवा दी तमोगुण की। और उसका क्या दोष रावण बिचारे का, उसने परमात्मा पाने के लिए और यहाँ से चढ़ा दिया समर्पण। कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, और सिर कह साटे पाई अभी अवगत लखनाथ। अब जिस भी इष्ट की तुम भक्ति करोगे तो समर्पण भाव से करना होता है। अब उसने ये भी सोच लिया रावण ने, भगवान राजी हो जा, परमात्मा मिल जाते, शीश चला जाए, उसी का तो दिया हुआ है। तो उस निकम्मी आत्मा, उस गुरु के आधार पर रावण ने क्या साधना की, इस मृत्युंजय मान के शिव को जो नाशवान है, और ऐसी साधना की आज के ये उपासक जिसको जो शिव की महिमा गावे 70 जन्म नहीं कर सकते, जो यहाँ से सिर चढ़ा देना प्रभु प्राप्ति के लिए, तो अंत में उनको क्या मिला बेचारे को, 10 के 10 सिर भगवान शिव ने वापस दे दिए, और वृद्धि दे दी, सिद्धि दे दी, अर्दन दे दिया, इतना ये कर सकते हैं। और फिर क्या बना, राक्षस बना, कुत्ते वाली मौत मरिया, वो धन भी ना रहा जिसके लिए उसने सब कुछ किया था। अब ये सोचना होगा कि समाज का दोष नहीं, आप तो एक शिक्षक हो, आप तो एक विद्यार्थी हो, शिक्षक गलत पढ़ा दे तो विद्यार्थी का दोष कति नहीं। अब ये ही रोल रावण के गुरु वाला रोल आज ये संत जन कर रहे हैं, जो कि श्री सुधांशु जी का प्रमाण आपके सामने है, इन्हीं की पुस्तक, इन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखा हुआ। अब ये दास इसीलिए चिल्ला रहा बार बार, जैसे किसी का कोई बच्चे हैं, आगे जा रहे हैं अबोध, और आगे भयंकर दावा नल यानी सारे जंगल में आग लगी हुई है, और ये भागे जा रहे हैं अबोध उसी की तरफ, इनको ये गुरु लोग भी उधर ही संकेत करें, जाओ जाओ बहुत अच्छा रास्ता है। तो इनसे निर्भाग मेरे ख्याल मत इस पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा, जिनको आप नहीं पता वो कितना भयंकर, जिधर तुम सबको दिशा दे रहे हो, जाओ बहुत ही अच्छा है, बड़ा शीतल है, बड़ा ही आनंददायक है, और अग्नि लगी हुई आग लग रही है वहां पर, और हमारे शास्त्र मना करते हैं। अब शिव की भक्ति करने से, शिव को मृत्युंजय मान के, सर्वेश्वर महेश्वर अजन्मा मान के, उस रावण ने अपने गुरुदेव पर विश्वास करके तनमन धन लगा दिया, आखिर में कुत्ते वाली मौत में राक्षस कहलाया। ऐसे भस्मागिरी ने भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन पर उल्टा सिर करके, नीचे सिर ऊपर ने पैर सिरासन पर 12 वर्ष तक कठिन तप किया। तो भगवान शिव ने एक दिन कहा, मांग भी बच्चा क्या मांगता है। उसने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान। शिव जी बोले, वचनबद्ध हुए भाई, क्या मांगा कि आपका भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने सोचा भी ठीक है, साधु लोग हैं कि अपने संरक्षण के लिए मांगता होगा, जंगल में रहता है दयालु। शिव ने वो कड़ा भी दे दिया, और जब कड़ा प्राप्त हो गया तो खड़ा हो गया एकदम, वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया, कड़ा प्राप्त होते ही वो भस्म कंडा प्राप्त होते ही क्या बोले, भस्मागिरी के होले होशियार शिव जी, अब तुझे खत्म करूंगा, अब बताओ। और किस लिए, कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, तुझे मारूंगा, अपनी माँ पे बदनीत, ये तमोगुण के उपासक, इसलिए गीता में इनको नीच आत्मा, दुष्ट आत्मा, राक्षस स्वभाव को और मूर्ख बताया। और ये संत जन उधर अग्रसर करें कि वो पूजा करो जो गीता मना करती है। और फिर भगवान विष्णु ने उसको गंडक नाच नचा के मारा, पार्वती रूप बना के, बताओ। और फिर भस्मा असुर कहलाया। ऐसे ही ब्रह्मा की साधना रजोगुण की थी, किसने, हिरण्यकश्यपु ने, आपके सामने वो राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरिया। विश्वामित्र ने विष्णु की उपासना, विश्वामित्र को बहुत अच्छा साधक माना जाता है, और उन्होंने विष्णु जी को अपना इष्ट मानकर पूजा की थी। और आखिर में क्या हुआ, अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 बालकों की पुत्रों की हत्या कर दी, नो कसाई की तरह, रैम भी नहीं आया। अब तीनों गुणों की पूजा यानी अन्य देवता, तीनों गुण अन्य देवता माते हैं। अब देखिएगा इसी से संबंधित है सातवें अध्याय का 20, 21, 22 और 23 तीन श्लोकों में फिर आगे स्पष्ट कर दिया। बीच में तो काल ने अपनी बताई है कि मेरी पूजा भी व्यर्थ है। ब्रह्म तक की साधना चार प्रकार के करते हैं। कौन कौन? जिज्ञासु, जैसे अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानी वो है जिन्हें पता लग गया और भक्ति नहीं करे, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उन्होंने, और ये भी ज्ञान हो गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है मनुष्य का। तो उन्होंने अपनी सोच से निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में एक परमात्मा का भजन करना है और दूसरी कोई देवता ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य पूजा नहीं करनी, ना ब्रह्म पर ब्रह्म की, और उसकी पूजा करेंगे। इसलिए वो सब त्याग के, और वेदों में क्या है कि ओम नाम का जाप है सिमरण का, ओम नाम का जाप केवल ब्रह्म तक की साधना होने वाला लाभ है, पूर्ण ब्रह्म और पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का नहीं है। क्योंकि दसवीं के सिलेबस में, टेंथ के सिलेबस में एमए का सिलेबस नहीं हो सकता। संकेत बहुत कुछ मिलते हैं आपस में, लेकिन वो सिलेबस नहीं हो सकता। ऐसे वो पांचवा वेद जो दास के पास है, उस परमात्मा कबीर साहब का बख्शा हुआ मेरे गुरुदेव के माध्यम से, अब पांचवें वेद से ये सारी बात बने। तो अब इसमें क्या है कि उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि मैं भाई ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का होगा, उन्होंने ऐसा मान लिया। इस काल ने ऐसा उलझा रखा इनको, ब्रह्म ने, ज्योत निरंजन ने, उन्होंने हजारों वर्षों साधना की भक्ति, परमात्मा मिला नहीं। क्योंकि 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है ब्रह्म का, काल का, ये ना किसी यज्ञ से, ना तप से, ना जप से, ना दान से, ना किसी क्रिया से मैं कभी नहीं प्राप्त हो सकता, अर्थात मेरी प्राप्ति बिल्कुल नहीं, चाहे यत्न कर चाहे मत कर। ये देखो 11वें अध्याय का फिर बीच में देखिए, गीता जी का अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 48 देख लें, सिगरी और बात में देखेंगे। हे अर्जुन, क्योंकि जब इन्होंने विराट रूप दिखाया उसमें कहते हैं ये है मेरा वास्तविक काल रूप, मैं काल हूँ और इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला, यानी वास्तविक मेरा ऐसा रूप है, एमएम रूप, एमएम रूप माने ज्यों का त्यों मेरा स्वरूप है, यू एमएम रूप, ये संस्कृत जानने वाले बच्चे खूब समझ सकते हैं, एमएम माने ज्यों का त्यों, ये हगरा वो रूप, ये तो इस प्रकार विश्व रूप ने बता दिया, मैं यूं ऐसा हूँ, काल हूँ, और ये न तो मैं वेदों के, मैं वेद और ज्ञान यज्ञों के अध्ययन से, अर्थात ये वेद, वेदों में जो वर्णित विधि है उसमें यज्ञ आदि करने का जो निर्देश है, तप जप जाप करने का, ओम नाम का, कहते इनसे मैं ना वेदों में वर्णित विधि से, न दान से, न यज्ञ से, न क्रिया से, न उग्र तपों से, और तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ, कभी भी नहीं देखा जा सकता, पहले भी नहीं और आगे भी नहीं। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं, क्योंकि ब्रह्म तक का सिलेबस है इसमें, और ये कहते मुझे पा ही नहीं सकता कोई। तो अब क्या बताया है बीसवें श्लोक में, सातवें अध्याय का यही बीसवां श्लोक फिर आइए, जहाँ पर स्पष्ट किया कि अन्य देवताओं के, अन्य देवता में ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो काल कहता अन्य देवता, और पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म की सतिथि मांगेंगे तो फिर ये ब्रह्म और पर ब्रह्म और तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी आन देवता। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 20 देखो, ये 18 ये 20 देखो। अब 15वें श्लोक से आगे चलते हैं कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका मूर्ख लोग, तीनों गुण अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, वो मूर्ख राक्षस लोग स्वभाव को धारण किए और मुझे नहीं बचते, और जो उनको बचते हैं उन लोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता में आते हैं, उनको पूजते हैं। आगे देखो 21 में लिखा है कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भगत की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति सथिर करता हूँ। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि ये नादान मेरी पूजा ना करके, और नीचे के अधिकारियों की पूजा करते हैं, ना मानते तो कुआ में पड़ो, मैं भी कहूँ भाई करें जाओ उनकी पूजा, लेकिन वो पूर्ण लाभ नहीं दे सकते, ऐसा समझो। 22 में देखो, वह व्यक्ति वह साधक उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए गए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने नीचे के कर्मचारियों को अधिकारियों को कुछ अपनी अपने पावर दे रखी है और वो तुम्हें आंशिक लाभ देते हैं, अगर मेरे से मिल जाओ तो तुम्हें उनसे ज्यादा लाभ दूं। और फिर कहता है मेरी पूजा भी अच्छी नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री ही पूर्ण लाभ दे, ऐसा समझो इस पूरी गीता को। अब यहां देखो फिर 23वें में कमाल कर दिया इन्होंने, सारी स्पष्ट कर दिया कि वो मूर्ख, वो किसी देवता की पूजा करते हैं, मैं उनकी बुद्धि वही रखता हूं, ना मानते थे कुआ में पड़ो तो उन, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, मूर्खों का वह फल नाशवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों का। और जो अन्य देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, उन्हीं तक के जाते हैं और वाक्षणिक सुख पाकर फिर 84 में आते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको जैसे चाहे जैसे बजे, ये इनकी अपनी सोच है, ये गलत, चाहे जैसे भरे बजे ऐसा नहीं, जो मेरी भक्ति करता बस, और वो भी शास्त्र अनुकूल, अलग तो करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी होती, मुझे ही प्राप्त होती। अब देखो अब हम चलते हैं 70वें अध्याय के पहले, 70वें अध्याय के 1 से लेकर 7 श्लोक आपके सामने स्पष्ट करते हैं। अच्छा ये क्या हुआ, ये जो संतजन बता रहे हैं जो अपनी के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, ये क्या हुई, शास्त्र विरुद्ध हुई, और शास्त्र विरुद्ध होने से इससे क्या लाभ होगा, ये देखिए पवित्र गीता जी पहले 16वें अध्याय के 23-24 श्लोक देखो, ये देखो 7वें अध्याय का, 16वें अध्याय का क्षमा करना, 16वें अध्याय का और 23 और 24, जो व्यक्ति जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर, जो गीता में लिखा ये शास्त्र है हमारा, चारों वेदों का सार है, जो गीता में आदेश है वो फाइनल है और किसी का आदेश हमने नहीं मानना, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख कोई। और इन्हीं चार चीजों के लिए, तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। फिर देख लो, जो साधक जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता हुआ न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को, अर्थात यूजलेस, बिल्कुल लाभरहित। अब 24वां श्लोक देखो अंतिम, यही 16वें अध्याय का, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, जो भक्ति के काम करने चाहिए, भक्ति के कर्म और नहीं करने चाहिए, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब 17वें का देखो 1 से लेकर 6 श्लोक आपके सामने, अध्याय नंबर 17 अथ सप्तम सप्तदशो अध्याय। अर्जुन ने पूछा 1 नंबर श्लोक में, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवता देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन कौन सी, सात्विक अथवा राजसिक और तामसी। आगे देखो 2 में क्या बताया भगवान ने, मनुष्यों की वह क्या, कौन बोल रहे हैं देखिएगा, हाँ मनुष्य, यहाँ भगवान बोले, नीचे देखो भगवान वाच, श्री भगवान वाच 2 नंबर में, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न अपनी मनमानी अप प्रेरित श्रद्धा सात्विक और राजसिक और तथा तामिस, ऐसी तामसी 3 प्रकार की ही होती है, उसी को मुझसे सुन। अब देखो क्या बताते हैं, पीछे भी जो इन देवताओं के पूजा किसी जन्म में कर रहे थे आज भी उन्हीं मरंगे हुए हैं, ये उनका स्वभाव ज्योका त्यों बना हुआ है। देखो अब 3रे नंबर में क्या लिखा, 3रा श्लोक, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, जन्म जन्म का संस्कार उनमें पहले जमा होता है होती है, वह पुरुष यह व्यक्ति श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं है वह भी स्वयं भी वैसा ही है, यानी पहले जो कोई साधना करता था किसी देवता की तो अब भी वो ज्यों की तो उसमें आस्था है, वो आज्ञा बुद्धि उसकी चले नहीं जब तक कोई परम संत ना मिले। अब क्या बताते हैं कि सात्विक, सात्विक माने जो सतो अच्छी आत्मा है, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की यहाँ तक की और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं सात्विक, ये जितने भी आज ये संत हैं ये है तो अच्छी आत्मा, क्योंकि अच्छे स्वभाव है इनका, इनका उद्देश्य भी ये सोचते हैं हम उद्धार करें, लेकिन ये स्वयं ही शास्त्र विरुद्ध साधना करके पाप के भागी हो रहे हैं। इनका स्वभाव है तो ये देवताओं की पूजा करेंगे, आज्ञा बुद्धि इनकी चले नहीं, गीता प्रमाण देती है। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, आगे देखो, राजस यक्षों की, राक्षसों की, और तामस मनुष्य हैं जो प्रेत और भूत गणों की पूजते हैं। देवता ये जो ना पितर पैतर पूजे वो राक्षस होते हैं, आगे देखो तामस होते हैं। पांचवे में क्या लिखा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्प जो घोर तप को तपते हैं, ये परमात्मा आप मन मान अपने आप मर्जीते हैं तपते हैं, आगे देखो, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त है, शरीर रूप से सतीत भूत समुदाय को और अंतःकरण में सतीत मुझ परमात्मा को भी करस करने वाले यानी दुख देने वाले अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान, ए परमात्मा। फिर देखो इसी का सोलह में अध्याय का ये पांचवा श्लोक, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, और दंभ और पाखंड और आकार से युक्त होकर कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त है, वो मुझे भी तंग करें, और अंदर में ये वैसे तो इसका भूत अग्रम माने धर्मा, ये जो तीनों यहाँ बैठे हैं ना दुखी, इनको भी तंग करते हैं। काल कहता है कि मैं जो हृदय में ये काल निवास करता हूँ, संसार कमल में भी इसका स्थान है, कहता मुझे भी ये दुखी करते हैं, इनको क्या करूंगा, ये तो राक्षस स्वभाव के समझ। फिर देखो घोर तप को तपते हैं मनमाना। फिर देखो पांचवा सत्रहवें अध्याय का पांचवा श्लोक, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, दम और अहंकार से युक्त कामना आसक्त बल से अभिमान से हैं, तो वो कहते हैं उन वो भी राक्षस स्वभाव के समान। अब देखना, अब ये दास आपको ये बताना चाहता है, ये देखो महापुरुष श्री सुधांशु जी महाराज स्वर्ग की लहरें, अब ये इनके लतीफेदार एडिंग है जिनके ऊपर ये बोली आत्मा आसक्त होगी, परम पूजा सुधांशु जी महाराज, और इनके पीछे देखना इनका जीवन चरित्र, दीर सकती है सुधांशु जी महाराज। यहाँ देखो नीचे से, सात वर्ष की आयु में अल्प आयु में प्रभात भजन गान आदि करते थे, यहाँ देखो, फिर दस वर्ष की आयु में हठ योगी, ओए हठ, गीता में हठ योगी को मना किया है, को तो दुष्ट आत्मा जो हठ करके इंद्रियों को रोक कर जबरदस्ती यानी मनमानी पूजा कर है, ये हठ योग माने मनमानी पूजा। हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ ध्यान साधना और कठिन क्रियाएं, घबराए नहीं, बाल यशपाल साधना पथ के अडिग पथिक बनकर अंतर शक्तियों को जागृत करने के किया, गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त की और फिर महाविद्यालय से दो विषयों पर एमए किया। फिर 20-21 वर्ष की मैं हरिद्वार में एक दर्शनार्थ नंद किशोर जी का साथ और बनखंडी साधु प्रकाशानंद का ज्ञान ध्यान सीखने का सुअवसर मिला। 22 वर्ष में विश्वविद्यालय की शिक्षा संपन्न करके भारत का भ्रमण मुनि मन उद्गिन से उठा देश की स्थिति को देखकर बंटा था, देश धर्म अधर्म जाति और स्वर्ग में अमीर गरीब में अंतर फंसा हुआ था। आगे देखो, जीवन अपने जीवन में एक शरण में मोड़ नई चेतना का जागरण शक्ति का उद्गान हुआ। आपको उत्तर काशी में हिमालय में साधना में योगी सदानंद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब देखो कहते इनके गुरु हो गए, ये पांच छह तो इनके गुरु, फिर देखो स्वामी मुक्तानंद जी के सानिध्य में 25 मई 1991 में रामनवमी के पावन दिन पर विश्व जागृति मिशन की स्थापना की। अब जिस महापुरुषों की देखो, अब हठ योग फिर देख लो, सबसे पहले इनको 10 वर्ष की आयु में हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ घोर तप किया, देखो ध्यान और कठिन प्रक्रिया, घबराए नहीं, बाल पथ के साधन के पथिक अडिग पथिक बनकर अंतर शक्तियों को जगाते रहे जागृत करते रहे। हठी और अपनी कर कमलों से देखना ये क्या लिखते हैं। अब देखिए जा 70वें अध्याय का इन्हीं महापुरुष के द्वारा टीका किया हुआ श्री मद भगवत गीता का और इन्हीं के कर कमलों से आपको दिखाता हूं और इसमें ना जाने क्या क्या जो है ना अपने तो केमर मूर्ख इतने बड़े शास्त्र तीन पार्ट करती है गीता के। अब देखो आचार्य श्री सुधांशु जी और ये 70वां शब्द दसो अध्याय ये अपने कर्कमलों से लिख भी रहे हैं और कर इसके विपरीत रहे हैं। अब देखो नीचे यही हुआ कि अर्जुन बोले मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक राजस और तामसी इन तीन प्रकार की ही होती है, उसको तुम मेरे से सुनो। भगवान ने कहा, पहले अर्जुन ने पूछा पहले में कि अर्जुन बोले हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कहे ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं की पूजा तीनों देवताओं की पूजा शास्त्र विधि है कि को रहित है, श्रद्धा पूर्वक वैसे कहते हैं अच्छी पूर्वक भी क्यों ना करते हैं, तो श्रद्धा से भी कर रहे हैं तो उनकी कौन सी निष्ठा कौन सी होती है, सात्विक राजस या तामसी, तीन में देखो। अब पांचवा ही देख लो इनके द्वारा लिखा हुआ, ये पांचवा देखो पांचवा और छठा, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप तपते हैं, बता आप भी वही क्रिया कर रहे हैं, और जो दंभ और अहंकार से युक्त अच्छी तरह युक्त जो भोग पदार्थ आसक्त रहित हट से युक्त अपने हाथ लगे हट से युक्त और आप भी हठ योगी पर जाकर नो कठिन साधनाएं की, जो शरीर में स्थित पांच भूतों अर्थात पंच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी करस करने वाले अज्ञानी को तू असुर निश्चय वाले यानी राक्षस समझो, अपने कर्मों से लिख रहे हैं और कर उसके विपरीत रहे हे परमात्मा। अब देखो इसी का 17वें अध्याय का 18वां श्लोक 19वां अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 19 इन्हीं के कर कमलों से, जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से अपने को पीड़ा देकर अथवा या दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहलाता है, और ये स्वयं तमोगुण के उपासक और हट करके यानी शास्त्र साधना जो की जाती है जबरदस्ती तो उसको समझो वो तो राक्षस स्वभाव के हैं। ये बताओ इन महापुरुषों के बाद फैसला करना है परमात्मा की प्यारी आत्माओं, ये कहां ले जा रहे हैं आपको। और अब देखो आदरणीय श्री आसाराम जी के बारे में भी दो विचार सुनो, चंद वचन इस दास के, शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है। ऋषि प्रसाद अंक है ये मई 2002, यहां देखो साधना करते हुए महापुरुष के बारे में नीचे देखना, देखो ये हठ योग है और ये हठ योग कर रहे हैं लोग दिखावा दंभ दुनिया को आकर्षित करने के लिए और गीता में मना सारे इसके विरुद्ध, और ये संतजन ऐसे ही सब आप अपनी कथाएं बनाकर और ये जीवों को उलझाते हैं। अब देखना और इधर देखो हनुमान जी की पूजा या कसर और रह रही थी ये और बता दी। अब और दिखाता हूं आपको एक गीता जी के 7वें अध्याय का, क्षमा करना गीता जी के 9वें अध्याय का 25वें श्लोक में लिखा है, जो गीता में मना किया है वो शास्त्र उसको करता है कोई तो शास्त्र विरुद्ध है, और गीता जी में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि जो भूतों को पूजते हैं जो देवताओं के पूजते हैं ब्रह्मा विष्णु और ये खुद कृष्ण के पुजारी भगवान श्री यार नाम देते हैं वो एक कम से कम हजारों की संख्या में इन महापुरुषों के वापस आए संत भगत जन जो पुण्यात्मा जिनकी थोड़ी बुद्धि काम करने लगी। अब उन्होंने क्या बताया, ये महाराज जी क्या बताते हैं आसाराम जी के 5-6 मंत्र बोल देते हैं, कौन से जैसे हरि ओम या ओम नमः शिवाय ओ ओम भागवते वासुदेव नमः और ऐसे चार पांच बोल के और फिर कहते हैं या ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र कर लो और फिर कहते हैं जो जिसको पसंद है ना वो ले लो। एक बात बताओ, हम तो रोगी हैं, बीमार, और वैद्य के पास जाते हैं और वहां वैद्य कहे के ले ये गोली, उसने यो भी ना पता तेरा पेट में दर्द है, वो आप पे सिलेक्ट करें के लिए 10 गोली गेर दी उठा के ठा ले, जिनसे ना अच्छी लगा वो खा लो, तो वो वैद्य हो सकता है? मेरे ख्याल में तो वैद्य नहीं, वो तो नीम हकीम है और उसने ये पता ये कुछ नहीं, ये फरीकी है, मुफ्त का चूर्ण वैसे ही बेमतलब का, ना इन लाभ हो ना नी, कोई कोई से न खाओ। और जब गोलियां सही होंगी और ऐसे वैद्य दे देगा तो उल्टी जैसे हो किसी का पेट में लाग रहे हो, दसर खा ले अजमोला दूना मरे, बताओ ये काम इन महापुरुषों के, इनको संत और महर्षि की पदवी है परमात्मा। अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इन महापुरुषों को भी सद्बुद्धि दो और अपनी प्यारी आत्माओं को भी सद्बुद्धि दो ताकि वो पहचान सके आपको। और ये अगर महात्मा होंगे, संत होंगे, तो ये अपनी हार स्वीकार करेंगे, करनी चाहिए, संत के हार जीत नहीं होती। कहते हैं हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। जो संत होता है वो सच्चाई को मान लेता है, सच्चाई सामने हो फिर भी नहीं मानता, तो फिर उसको ये लिखा ही है तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव के, वो तो उपद्रव किया करें, फिर वो मानना ना करते। लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि अब जनता स्यानी है, समझदार है, बुद्धिजीवी है, कोई बालक नहीं जिसने बड़ो लेंगे हम, बतेरे दिन बहका लिया हमारे को, हमारे भूत बनवा दिए, पितर बनवा दिए। अब शास्त्र भी दुर्विन साधना करवा के क्या कहते हैं, श्राद्ध निकालो, और गीता मना करती है कि श्राद्ध मत निकालो, श्राद्ध निकालोगे तो भूत बनोगे। अब देखो, और अभी दिखाता हूँ महर्षि जी का यानी ऋषि आसाराम जी के द्वारा श्राद्ध महिमा की कलम तोड़ लेखनी से। अब गीता जी के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक आप देखिएगा, अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 25। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं, और भूत पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब देखना, भगवान तो कहता है कि श्राद्ध मत निकालो, पितर मत पूजो, और ऐसा करोगे तो तुम पितर बनोगे, भूत बन जाओगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करोगे, अन्य देवता की, तो उन्हीं के लोक में पहुंचोगे, अक्षणिक सुख पाकर फिर जन्म मृत्यु में लगे रहोगे। और अपनी भी कहता है कि मेरी भी वैसे तो अनुतम है, क्योंकि ये ज्ञान दे रहे हैं तो सच बता रहे हैं, मेरी भी अनुतमाम गति है, ब्रह्म तक की साधना भी, तो उसके लिए उस परमात्मा की भक्ति करो, संकेत दिया है कि उस भगवान की भक्ति करो। तो यहाँ भगवान खुद मना करते हैं, ब्रह्म के देवताओं की पूजा करने वाले वह भी मूर्ख बता दिए, और पितर श्राद्ध काटने वाले ये पितर बन जाएंगे, भूत बनेंगे। पितर एक सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, इन तो थोड़े से ऊपर है, वह भी भूत यानी प्रेत है वह, और वो बने क्यों, कैसे, इन्हीं ऐसे महापुरुषों के द्वारा मार्गदर्शन पाकर उन्हें गलत साधना की, भूत बन गए। आपको प्रमाण देता हूँ। अब ये क्या, इन्होंने क्या अटकल अड़ाई है कि ब्रह्म पुराण मार्कंडेय पुराण उसमें ऐसा लिखा है भूत पूजो, अरे कमाल की बात है। देखो वे गीता जो है ये भगवान ब्रह्म का के द्वारा दिया हुआ एक संविधान है, एक राजा का संविधान होता जैसे हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, और इस संविधान में जो धारा लगी है कि ऐसा नहीं करना ऐसा करना, उसको कोई तोड़ता है तो उसको, जैसे कोई लिखा है इसमें कि यदि कोई किसी की हत्या कर देगा तो उसकी 302 की धारा लगेगी और फांसी की सजा हुए। अब ये तो भगवान का यानी राजा का आदेश है। अब यह उदाहरण देना पड़ेगा कि एक व्यक्ति का गांव में एक दरोगा दोस्त था, SHO, उसने जाकर SHO से प्रार्थना की कि दरोगा जी एक मेरा पड़ोसी है बहुत दुखी करे, शराब पी कर नंगा नाचे, कुआं गाली देवे, बोलने तो सिर फोड़ न हो जा, अब क्या करूं, मेरे तक नाक में दम कर रखा है। दरोगा जी ने आदेश दे दिया कि मार लठ, उसका माप देख लूंगा। अब दरोगा उस नजाते उसकी ऑर्डर मान के उस दरोगा का और उस अपने पड़ोसी का लठ दे मारा, लठ मारते मर गया, मृत्यु होगी। वही दरोगा उसको अथकड़ी लगा के लिया और कैद में डाल दिया, फांसी की सजा होगी उसे। ऐसा तो किस आदेश मानते, उसकी आदेश से संविधान का भंग हो गया। इसने तो कह दिया मार लठ, कह दिया किसने, आदेश किसका था, एसएचओ का। और राजा का प्रधानमंत्री का आदेश है कि जब किसी का मार देगा, जब वो मर गया 302 की सजा फांसी होगी। तो उसने अपने जिसका वो पूज्य मान रहा था उसका आदेश मान के और वह गलती कर दी, संविधान तोड़ दिया। तो उस थानेदार ने कोई डाल नहीं उड़ाई, कोई बचाव नहीं कर सका, स्वयं पकड़ के लाना पड़ा, उसने अंदर ठोक दिया। इसी प्रकार हमने केवल चारों वेद, पवित्र चारों वेद और उनका सार पवित्र गीता जी, वही ब्रह्म द्वारा चारों वेद बोले गए, ब्रह्म द्वारा गीता बोली गई श्री कृष्ण में प्रवेश करके। अब हमने गीता जी का संविधान मानना है, यानी वेदों का के आदेश मानना, ये प्रभु का आदेश है और ऋषियों का या किसी देव का वो अपना आदेश है, उसको उससे अगर कानून भंग होता है तो वो हमने नहीं करना है, करेंगे तो उसकी सजा पाएंगे पाओगे, और यही हो रहा है। अब देखिएगा एक ऋषि थे, अब मार्कंडेय पुराण में आपको दिखाता हूँ, एक रुचि नाम के ऋषि थे, रुचि नाम के, और उन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों में लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा मूर्ख और राक्षस लोग करें, राक्षस बन जाना उनता, और श्राद्ध श्रुद्ध नहीं निकालने चाहिए, वेद मना करें। उन्होंने चलो जितना सोचा था एक ब्रह्म साधना पर लग गए, अपनी सोच से शास्त्रों वेदों को समझ गए। तो जब हो गया 40 वर्ष की उम्र का रुचि ऋषि, उसके पिछले चार जो है ना पत्र दिखाई दिए, चार पत्र, वो कहने लगे बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं किया, उसने शादी भी नहीं करवाई, और विवाह तो भाई करना चाहिए था तुझे बेटा, विवाह करके ना क्या करे कि देखो देवताओं की पूजा करे, श्राद्ध निकाले, पितरों की पूजा करने से, भूतों की पूजा करने से वो बड़े अच्छे पुण्य में लोगों में चला जाता है, और भगवान कहे तो मूर्ख ऐसा करना नहीं चाहिए, और वो अपने अपने वंशज को उस गलत साधना के लिए फोर्स कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, क्योंकि पहले वो गलत साधना करके आप भूत बन गए, और अब अपने पितर अपने पुत्र को प्रेरणावश कर रहे हैं कि तो भी ब्याह करुआ हमारे श्राद्ध निकाल। अब रुचि कहने लगा है पितर महो, वेद में तो इन श्राद्ध निकालने को मूर्खों की पूजा लिखा है, कर्मकांड को अविद्या कहा है, निमूर्ख का मूर्खता कहा है, फिर आप मुझे क्यों लगा रहे हो इसे कर्म में। और पितर भी हाँ भरते हैं, हाँ बेटा ये तो बिल्कुल सही है कि वेद में कर्म को, इस कर्म कांड को, इस कर्म को, श्राद्ध श्रुद्ध को यानी बिल्कुल अविद्या कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर क्या कहते हैं, फिर भी पितर यूं कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर फलाना कर देते हैं, आप भूखे भरे बता क्या कर देते हैं ये, और क्या अब देखो वो स्वयं तो भूत बन गए, और आज आपने कोई आपके पिछले चार दीख जा दादा पड़दादा पिताजी आपका कर्जा पट जा और सब संविधान तोड़कर उनकी आम भर लोगे, अच्छा जी आपको ऐसे कर लेंगे, तो बताइए काल का जाल है, और वो हमने बिल्कुल नहीं करना, दादा दिखे चाहे पड़दादा दिखे, भाई अब कोई सहारा उनसे नहीं मिल सकता, ये हमारी भी भक्ति भंग हो जाएगी और वो तो बेचारे दुखी पाओ, फिर भी पाना ही पाना है, और फिर हम भी नरक में जाएंगे। अब रुचि के साथ ये बना, अब देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय और ब्रह्म प्राणांक कल्याण संक्षिप्त 21वें वर्ष का विशेषांक कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें 237 पृष्ठ पर क्या लिखा है कि एक रुचि नाम का ऋषि, अब हिंट दिखाऊंगा बाद में पढ़ सकते हो, इसको मत मद्दे नजर रखना, फिर आप एक मिनट में समझ जब आ जाएगी, अगर आप इसको सारा पढ़ोगे तो पिछला पढ़ते हो इतना अगला भूल लेते हो, अब संत ही इसका निष्कर्ष निकाल कर दिया करते हैं। अब ये क्या लिखा है यहाँ देखो, इधर रुच्य मुनि की उत्पत्ति कथा, यहाँ देखना मार्कंडेय जी कह रहे हैं, फिर के पितर क्या बोले, यहाँ देखो पितर बोले विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का रुचि से कहा, हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया, अपने पुत्र से कह रहे रुचि से, ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं और वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा उच्चारण शब्द से पितरों को तथा अन्न दान बलि देवादि भूत भूत आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं। यह देखो अब यहाँ ज्यादा ना लेकर ये देखिएगा, बस ये देखो ये रुचि ऋषि है और इसको ये चार पिछले भूत दिखाई देंगे, अपने पिताजी दादाजी परदादाजी तीसरा दादाजी। अब इनसे डरता है, कह तो रहा सच्चाई क्योंकि इसने वेद पढ़ रखे। अब ये क्या कहते नीचे देखो, रुचि बोला, रुचि ने पूछा, पितर महो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये तो मूर्खों के काम बताया, अन्य देवता और ईश्वर आश्रुद निकालना, भूत पूजना, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है, और फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करने से अधम मनुष्य संयम करते हैं, फलाना करते हैं। बताओ वो थानेदार वाला आदेश दे रहे हैं अब इसको। अब ये जो जितने भी पुराणों में आदेश है ना, ये तो उस असत्य वाला आदेश समझना, ऐसा करने से हमें फांसी गले गलेगी, जो इस गीता जी के विरुद्ध जो कर रहा है, नो डाउट। अब ये तो सिद्ध हो गया आपको। अब देखो ये श्राद्ध महिमा श्री आसाराम जी द्वारा विशेष बड़ी ठोक ठोक के लिखी है। इन महापुरुषों ने तो ऐसा जाना है कि दुनिया राज्य होनी चाहिए, तुम्हारी जनसंख्या सामने ज्यादा हो, तुम्हारी प्रभुता बनी रहे। बोले आदमियों आप भी दो दिन के मेहमान फिर मरोगे कि तक नरक में पड़ गए। बरहा वायु पुराण मनुस्मृति महाभारत पर आधारित एवं कुछ पूज्य पांच संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग वचन से। अब इन केवल इन पुराणों का आश्रय लिया मनुस्मृति, और ये गीता के विरुद्ध है क्योंकि असत्य वाला आदेश है, तो ये इनको डबो का मानेगा। अब यहाँ देखो कल्याणकारक सरहद हे परमात्मा, लेकिन महापुरुषों की सोच कितनी, परम पूज्य पाद संत श्री आसाराम जी बापू इसी पुस्तक से बीच से आ रहे हैं, ये समझो। अब देखो इसमें चार नंबर प्रश्न पर देखना, श्राद्ध महिमा, और यहाँ देखो इसके ये तीन नंबर है, ये चौथा देखो चार नंबर। इससे पैतृ एवं पैतृ लोक को मानकर उसको उसका लाभ उठाना चाहिए तथा श्राद्ध करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी श्राद्ध करते थे, तो कर दिया काम। अब भगवान श्री रामचंद्र जी तो 12 वर्ष युद्ध करया करते। अब जैसे पितर कह रहे थे मार्कंडेय पुराण में कि तू ब्याह करवा ले, और ब्याह कराए बिना उस स्त्री करेगी जो है ना, स्त्री तेरे पास नहीं होगी तो तू हमारे कुछ नहीं कर सकता। और भगवान श्री राम की पत्नी या माता सीता जी का अपहरण 2 वर्ष के बाद वनवास से हो गया था, और 12 वर्ष तक तो युद्ध किया था उसने, किस टाइम श्राद्ध निकाला है, मरने यानी फुर्सत से श्वास लेने की भी नहीं रही भगवान ने, किस टाइम श्राद्ध निकाले उन्होंने, इन्होंने ये अटकल ला रखी है। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार विनाश हो गया था, और श्री कृष्ण जी भी विनाश हो गए थे, उनको भी पैर में तीर लग कर उनकी मृत्यु हो गई थी, भाई उन फिर भगवान श्री कृष्ण का यादों का श्राद्ध किसने निकाला, ये संत जी गए होंगे मेरे ख्याल उनका श्राद्ध निकालन फिर बाद में, कमाल करते, फिर कृष्ण जी तक गया नरक में तो भूखा मरेगा, और उनके सारे पितर भी भूखे मर रहे होंगे अभी तक, कौन से वाले बेचारों को। अब देखो नाराज ना होना, दास की मजबूरी होगी सच्चाई कहने की, रोता हुआ कह रहा हूँ मैं इनके इनके प्रति, ताकि इनकी आंख खुल कर सोचे अपने ऊपर, मजबूर हो ये समाज को सतमार्ग बताने का, ये स्वीकार सतमार्ग तो इनके पास हो ही नहीं सकता जब आप रिजेक्टेड है, तो गीता में जब शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं, तो अब इनको ये कहना चाहिए भी ठीक है हमारे से जो बनी सो बनी, क्योंकि ये भी प्यारी आत्मा थी, इनका जीवन चरित्र देखा मैंने मोटा मोटा सा, कि 5-6 वर्ष की उम्र से इसका काफी 4-5 पढ़े थे, उसके बाद इनकी शिक्षा भी नहीं है ऐसा लिखा है, उसके बाद ये फिर पता नहीं कहाँ कहाँ गए बेचारे, भटकते भटकते एक फिर लीलासा नाम के संत मिल गए, उनने जैसे इनको साधना दे दी उस पर लग गए, फिर हठ योग किया कि तो गुफाओं में पहुंच गए, कहीं जंगलों में गए। अब ये थी तो प्यारी आत्मा रावण की तरह, अब उनको रास्ता ठीक ना मिला तो इनका भी दोष कति नहीं। अब ये इसलिए अब दोषी हो जाएंगे जो इस ज्ञान को सुनकर भी नहीं मानेंगे, फिर इनको दोष लगेगा। और अब जो अपने आप को दोष मुक्त करना चाहते हैं सभी संत, तो अपने कह दे भाई देखो हमारा उद्देश्य तो ठीक था पर हमने नहीं पता था, क्या करें हम। अब कोई किसी का ये भी बिल्कुल दोष नहीं अभी तक, अब ये हो सकते हैं अपने दोष मुक्त, और कहें उसके भी जाके इस दास के पास अपना कल्याण करवा लें। पूरे ब्रह्मांड को एक संत बहुत है जो सत उपदेश देने वाला। कबीर साहब कहते हैं सिद्ध तारा पिंड आपना और साधु तारा खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तारे देवे ब्रह्मंड। पूरे विश्व को एक ही संत होता बहुत नाम देने का, क्योंकि नाम देना अपनी जब ये विश्वास हो जाएगा मार्ग सही है और दूसरा रास्ता नहीं है तो कोई भी नियम भंग नहीं हो, कोई नियम भंग नहीं हो, एक नाम देगा डट का वजन करे, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब इन महापुरुषों को चाहिए कि ये अपना स्वीकृति दें। अब ये आगे क्या बताते हैं इसी के पांच नंबर श्लोक में, पांच नंबर में यही वो ऋषि प्रसाद, ये वो ऋषि प्रसाद इसके पांच नंबर पृष्ठ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये बीस पृष्ठ की सारी है। पुराण में आता है कि अश्वनी में कृष्ण पक्ष की अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा युक्ति होती है, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश होता है। इस दिन हमारे पितर यमलोक से आए हैं, देखियो यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से मृत्यु लोक में अपने वंशजों के निवास स्थानों पर रहते हैं, अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते हैं। यमलोक थे, ये देखो यमलोक, यमलोक कौन सा नरक, यमलोक तो नरक है जिसमें यम के दूत लठ मारे उल्टे ठोक दे उबार निकलता है, कहते वहां से छुट्टी लेकर आते हैं यमराज होते हैं, नरक मत आते हैं। और फिर ये फिर पितर क्यों बने, ये सोचो ना ये पितर क्यों बने, जिनके आज तुम इतनी चिंता उठा रहे हैं, ये संतजन आपको उनकी तरफ कुएं में डाल रहे हैं, ये पितर बने क्यों, ये पितर न्यों बने इस पवित्र शास्त्र का, ये भगवान के संविधान का अवहेलना करके उस SHO वाली बात मान ली। अब ये संत हो गए उस SHO के स्थान पे, इनको फांसी तो दलवाएंगे और इनको नरक भेज रहे हैं। अब इस पवित्र गीता के 9वें अध्याय का 25वें श्लोक का संविधान तोड़ दिया परमेश्वर का, जिसके कारण ये हमारे पूर्वज भूत बनाए और बने कुकर इन महापुरुषों ने बनवा दिए, इन्होंने बनवाए गलत मार्गदर्शन करके, और फिर वो फिर उनके श्राद्ध खाए हैं अपना पेट भरने, पहले तो भूत बनवाए शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के, और फिर इनके श्राद्ध खाए हैं और अपना पेट भरने कई वर्ष तक। 25वां देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितर पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं पितर बन जाएंगे, और भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, और मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होगा। अब ये संविधान तोड़वा दिया इन महापुरुषों ने, अब क्या बताते हैं, अब ये क्या खिचड़ी मिलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पूज ले ये भी पूज ले, वाह भी वाह। कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब सौ जैसे एक 10 किलो घी का हलवा बना दिया और उसमें उठाकर थोड़ा सा गोबर घेर दिया तो बात हो गया, इब निर्मल साधना करते करते गीता अनुसार साधना करते हुए भी अगर कोई और पूजा कर दी, देव की पितर पूज दिया, श्राद्ध पूज दिया, या किसी प्रकार की और जंतर मंत्र करवा दिया, तो हलवे में खीर में सब्जो बालू रेत घेर दिया तुमने, या उक्का बीड़ी शराब तमाखू पी लिया था। अब भक्तात्माओं अब इनके ऊपर क्या टिप्पणी करें, अब देखो इनकी अंतिम उपलब्धि क्या बताते हैं, कहते हैं भगवान का क्या पाना, अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया, हाँ क्या बात कही, अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया, क्या मिल गया, फिर कहते हैं भगवान, वैसे तो श्री कृष्ण तो भगवान, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भगवान माने और उसके परम पुजारी, और फिर कहते हैं वो युद्ध के मैदान में मिला सही भगवान था कौन, कहते उस ज्योत स्वरूप मिल गया, वो बस वो था जो के सामने खड़ा था, वो मिला था मुक्ति हो इन्हीं की हिसाब है। अब देखो इन कहता जो मन में आई वो कह दी, क्योंकि अनजानों में भाई कोई कुछ भी कहो, जिज्ञासु को कोई कुछ भी कहो उसको तड़प होती है। ऋषि प्रसाद अप्रैल 2002 की पत्रिका है ये, और इसके दो नंबर पृष्ठ पे, इसके दो नंबर पृष्ठ पे देखिए, ये देखो दो नंबर पृष्ठ, ये दो नंबर पृष्ठ, और यहाँ देखो तत्व दर्शन क्या बात कही, तत्व दर्शन है महापुरुष तत्व दर्शन कर रहे हैं, सामान्य और विशेष ज्ञान। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर आइएगा, यहाँ देख लेते हैं, इतना सरल। यहाँ देखो परमात्मा मरने के, कोई कहता परमात्मा मरने के बाद मिलेगा, कोई कहता बैकुंठ में जाएंगे तब मिलेगा, नहीं? और लगता है कोई परमात्मा मरने के बाद मिलेगा बैक, या नीचे से देखिए, यहां से आइए, जिस ज्ञान की मौत नहीं होती, जिस ज्ञान से जन्म नहीं होता, जिस ज्ञान का जन्म नहीं होता वह हमारी आत्मा है और वही परमात्मा है। जब उसका ज्ञान नहीं होता तब तक लगता है कि परमात्मा मरने के बाद मिलेगा, वैकुंठ में जाएंगे तब मिलेगा, गुरु कृपा करेंगे तब मिलेगा, परंतु जब गुरु कृपा हुई तो ठीक से जान लिया लगेगा कि उसे पाना कितना सरल है, इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। अब दिखाता हूँ आपको युद्ध के मैदान में क्या मिला। अब यहाँ भगवान ने शिव का रूप धारण कर रखा है महाराज जी ने, ये देखो शिवलिंग रखा है और शिव जी बन गए अपना, क्या बात कही। और ये देखो कितनी प्यारी आत्मा है परमात्मा, ये बोली आत्मा आशा लगाए बैठे हैं इन महापुरुषों से हमें भगवान मिलेगा। अब देखिएगा अपवित्र गीता जी फिर उठाइए, 11वें अध्याय को फिर लीजिए, पवित्र गीता जी के 11वें अध्याय के 46वें श्लोक से हम चलेंगे और 32वें श्लोक से चलेंगे और आपको 48वें और पर समाप्त करेंगे। 40 देखिएगा, अब यहाँ देखो 11वें अध्याय में ये काल जो है ज्योत निरंजन, ये अपना वास्तविक स्वरूप दिखाता है और अर्जुन जब नहीं मानता दिखता इसको डरा डरू के और युद्ध के लिए तैयार करना चाहता है, इसका उद्देश्य यही था काल का। तो अर्जुन तो बिल्कुल नहीं चाहता था युद्ध करना और श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे युद्ध कराना, उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये तो काल बीच में खूटा ठोक गया। अब ये देखो, अब यहां से अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 32 देखो नीचे, ये काल कहता है लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, ये काल है माने काल हूँ, काल संस्कृत साफ दिखाई दे, काल है, काल हूँ इस समय इन लोगों का नष्ट करने के लिए परिवर्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेना में सतीश योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना, अर्थात तो युद्ध ना करेगा ना तो भी नहीं रहेंगे, उन्हें मार दूंगा मैं, वो तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी उन सब का विनाश हो जाएगा। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये तो काल ज्योत निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है। आगे देखो अब 46वें श्लोक में आओ, अब यहाँ भी अर्जुन आंखों देखा बता रहा है कि हे भगवान, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं और ज्योत निरंजन 1000 भुजा का है, मैं वैसे ही, ये वही 11वां अध्याय ये 11वां अध्याय है, श्लोक नंबर 46 देखिएगा, अर्जुन कहता मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, क्योंकि ये श्री कृष्ण मान रहा है और ये बोल रहा काल, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, मैं सक गदा चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्राबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। आगे देखो 47 में, सहसरा बाहु दिखाना चाहता था मैं, सहसरा बाहु। सहसर बाहु माने हजार भुजा के भगवान, एक हजार भुजा वाले भगवान। सहसरा शीर्ष हजार, सहसरा पद, सहसरा अक्षर, सहसरा अस्थ। तो ये काल है हजार भुजा वाला। हजार भुजा वाले भगवान अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाइए, क्योंकि वो इस विष्णु अवतार मान रहे थे, श्री कृष्ण बोल रहा है नहीं, वो तो काल कला कर रहा था। आगे देखो 47 में क्या कहता है, ये काल है अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो मैं सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखला दिया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब देख लिए, ये मैंने तो ना अपनी कृपा से दिखाया है, पहले किसी ने नहीं देखा आज तक। और जो कौरवों की सभा में श्री कृष्ण जी ने जो विराट रूप दिखाया था, वो श्री कृष्ण ने दिखाया था, नहीं तो यहाँ अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मैंने पहले किसी ने नहीं देखा मेरा स्वरूप। कौरवों की सभा में श्री कृष्ण जी पहले दिखा चुके थे अपना स्वरूप वो विराट, क्योंकि इन सब भगवानों का अंदर लिंग शरीर एक तेजो में श्री सूक्ष्म शरीर है, और उनकी जो चांदने में रोशनी में प्रकाश में दिन रात का अंतर है। जैसे